गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूहे महला चौथा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुत किशन उतरिया घर जिस जाए नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुत किशन उतरिया घर जिस जाए हर की अकथ कथा सुनो जन पाए जित सहसा दुख भूख सब लह जाए राहो रवदास चमार उस्तत करे हर कीरत निमख एक गाए पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पै पग आए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक छिपा कह बुलाए खतरे ब्राह्मण पेठ दे छोड़े हर नाम देओ लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख अठ सठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे। जे कृपा करे हर राय, जितने भगत हर सेवका। मुख अठ सठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे। जे कृपा करे हर राय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
सतनाम धनवाखे गुरु, साहिब जियो ना हों जति सती, नहीं पढ़या मूरख मुगदा जन्म भया। परनवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया, जिन तो नाही विसरिया, दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, राखो प्रभु डोलन ते, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, परम सन्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे अमृत बचन दे विचार श्रवण करन वास्ते इकत्तर होए सत संगी जनों, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने अज अमृत वेले प्रकाशमान हो के जो शब्द हुक्म रूप विच बख्शिश कीता है, इस अमृत बचन दे उचारण करता सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा राग सूही है और अंग 733 ऊपर इस अमृत वचन नु दर्ज किया गया है। इस अमृत शब्द दी विचार दा जो अज मरकज जां तुरा है वो एक है कि उस परिपूर्ण परमात्मा वाहगुरु जी दी अकथ कथा नु सुन तेरे अंदर दा सहसा भुख दुख अंदर दा झोरा तेनू छड़ के चला जाएगा। नाल इस शब्द विच वाहगुरु जी दी इबादत करन वाले परमात्मा जी दी भगती करन वाले किन्ने उच्चे रुतबियां ते किन्ना सन्मान योग थावां ते और किन्नियां उच्चियां पदवियां ते पहुंचे उन्हां विच्चों तिन्ना दा जिक्र कीता गया। एक भगत रविदास जी महाराज के किरत भावें उन्हां दा चमड़े दी सी पर परमात्मा दी कीर्ति इतनी कीती कि सारे संसार विच उन्हां दा नाम प्रगट होया ते उच्ची जात वालियां ने भी भगत रविदास साहिब जी दे चरणां विच नमस्कार कीती। दूसरा इस विच बिदर जी दा जिक्र कीता गया है। दासी दे पुत्र ने पर कृष्ण जी जदों हस्तनापुर जांदे ने दुर्योधन दे घर नूं छड़ के ओ दासी दे पुत्र बिदर दे घर विच निवास करदे ने। तीसरा कि भगत नामदेव जी नूं लोक छीमा छीपा कह के बुलांदे ने पर परमेश्वर ने ऐसी खेड कीती कि हंकारी खत्री ब्राह्मणा वल तां अपनी पिट कर ली पर नामदेव जी नूं अपने मुख न ला लिया। जितने भी परमात्मा दी भगती करन वाले भगत ने ये सारे तीर्थ उन्हां भगतां दे मस्तक ते तिलक लांदे ने। कहन तो मुराद कि भगती करन वाला खुद ही अपने आप विच तीर्थ है। आओ इस अमृत शब्द नूं गुरु बख्शीश नाल आपां विचार सकीए। सतगुरु गुरु रामदास जी दे ए अमृत बोल ने। धन गुरु रामदास महाराज आप जी अपने शब्द दी कला वरता के आप विच वरतो हिरदे दी भावना एकाग्रता बख्श के इन्हां अमृत बचना दी आप ही विचार करा लवो। प्यार अदब नाल साध संगत जी उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।
वाहे गुरु साहेब जी। सूही महला चौथा घर छेवा।
राग सूही है ते इस अमृत शब्द नू उचारण करन वाले गुरु रामदास जी महाराज ने और इस अमृत शब्द नू छेवें घर दे विच गाउण दी हदायत कीती है।
एक ओंकार ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਖਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਉੱਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੁਤਬਾ, ਮਰਤਬਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ।
ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵਚਿੱਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਦੇਸ਼ਨਾ। ਉਸ ਸੁਦੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੁਗੜ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਵਕਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਿਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਜੋ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ब्रह्मा जी दे मुख तो होई है। खत्री अक्षत्री ओदी उत्पत्ति बावां तो होई है। वैश दी उत्पत्ति पट्टां तो होई है। ते शूद्र जड़ा है वो पैरां तो जन्मिया है। ये वेदां अंदर भी जिक्र किया गया पर समय दे नाल ये वर्ण वंड जदों प्रचलित होई वो फिर इन्ने जोरां शोरां ते जात भेद नस्ल का वितकरा चलिया। सच एवे कि इन्हां चारां दे कर्म भी वक्रे वक्रे निर्धारित कर दिते गए। ब्राह्मण का कर्म केवल पढ़ना पढ़ाउणा है, पूजा करना पूजा कराउणा है, खत्री का कम मैदानी जंग विच जूझना है, वैश का कम खेती करना ते व्यापार करना है, ते शूद्र का कर्म बना दिता गया कि इन्हें बाकी तिना वर्णा की खिदमतगारी उन्हां दी सेवा करनी है। देखो आवांगे अज दे शब्द विच कि गुरु नानक साहब की जोत भगत साहबान जी उन्होंने इस दे विरोध विच किन्नी वड्डी आवाज उठाई ते नाल एक गल कही कि जिन्हां नूं लोक नीच कहिंदे ने जे परमात्मा की भगती नाल जुड़ गए ये सारे उत्तम पदवियां ते पहुंच जाणगे। मैं अर्ज की ब्राह्मण खत्री वैश ते शूद ये चार वर्ण बना दिते गए। इन्हां चारां वर्णां दे कर्म भी वंड दिते गए ते ये भी सच वर्ण वंड मुताबक शूद्र नूं इन्ना हक भी नहीं कि वह धार्मिक ग्रंथां दा पठन पाठन कर सके अभ्यास कर सके। अभ्यास की बात तो दूर कि एक मंदिर दे विच जां धर्म अस्थान विच भी शूद्र नूं वर्ण का कोई हक नहीं। वर्ण वंड ने यह कह दिता पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जिन्हां भगतां महापुरखां दे बचन ने ते आदि काल तों ही जिहड़े सचमुच परमात्मा की भगती विच लीन ने उन्होंने जात के आधार से मनुख की वंडी नहीं। मनुख का रुतबा तो इहदे कर्मां अनुसार है। जिहो जिहा कर्म करेगा ओहो जिहा इंसान है। इहनूं थोड़ा जिहा समझियो। वर्ण वंड जात पात है जन्म के आधार से। जन्म के आधार से मतलब कि स्वर्ण जाति के घर पैदा होया वो उच्चा ही है। जिहड़ा शूद्र के घर विच पैदा हो गया वो लख गुणी होवे पर वह नीवें का नीवा ही है। पुरातन समय वर्ण वंड मुताबक जन्म के आधार से जात मनी गई। ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही है, खत्री के घर खत्री ही है, वैश दे कर वैश शूद्र कर शूद्र। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने भगतां ने एक शब्द कहा, कह लगे जन्म के आधार से नहीं एक कर्म के आधार से है। जिहो जी को कर्म करेगा जे ब्रह्म कर्म करेगा तो वह ब्राह्मण बन जाएगा भावें उहदा कम जोड़े गंढना क्यों ना होवे। जे ब्रह्म कर्म करेगा तो भावें उहदा कम कपड़े बुनदा क्यों ना होवे वह ब्राह्मण होवेगा। बेनती करा कर्मां दे आधार ते ते खास करके दशमेश जी दा एक बचन है कि साध कर्म जो पुरख कमावै नाम देवता जगत कहावै। जिहड़ा चंगे कर्म करेगा श्रेष्ठ कर्म करेगा वह वाकई देवता है। कुकृत कर्म जो जग मैं करगी ते जिहड़ा बंदा नीवें कर्म करेगा माड़े कर्म करेगा ते उहनूं दैंत कहा जाएगा। इहदा मतलब कर्म के आधार से ही बंदा श्रेष्ठ है। इस नुकते नूं समझो, जात के आधार से नहीं कि मैं उच्ची जात जमिया ते जो मर्जी पाप करी जा मैं जात करके बच जाने मैनू कर्मां की परवाह नहीं। हजूर ने कहा नहीं, अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे। उत्थे ना तो जात जानी है ते ना बंदे की ताकत छल जोर जाना है। उत्थे तो नवे ने जिन्हां नाल तेरा वाह पैणा है। इसे करके गुरबाणी ने श्रेष्ठ कर्म ते शुभ कर्म ते चंगे कर्म ते गुणा ते बहुत जोर दिता। तां ही असीं बाणी विच वचन पढ़ने हां ना कि कर्म दे आधार ती कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जात करके नहीं कहा कि जात करके कोई परमात्मा दे नेड़े ते जात करके दूर नहीं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जां सतगुरु दे बचन ने हजूर गुरु ग्रंथ साहिब अंदर बाबा फरीद साहिब जी दे ते उन्हां ने ये बचन दर्ज किते। कहन लगे फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण, जात नहीं गुण तेरे कर्म तेरे, जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार। कर्म फिलासफी जी हो जाए तेरे कर्म जा जेड़ा ये मखीना निकल रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ये राही भी उपदेश दें दे कि देखो मैं बेनती करा कर्म दे आधार ते बंदे दा फैसला ना के जात दे आधार ते। पिछले दिन एक बेनती की सी हर बंदे नू ए हक है कि वह शुभ कर्म कर सकता है। गुरसिखी अंदर हर बंदे नू हक है कि वह बाणी पढ़ सकता है, कीर्तन कर सकता है, कीर्तन सुन सकता है, वह सरोवर च इशनान कर सकता है, वह पंगत विच बैठ के लंगर छक सकता है। हर बंदे नू अधिकार है कि दशमेश दे दिते हुए खंडे बाटे दे अमृत की दात ले सकता है। जात दे आधार ते नहीं कि फलानी जात वाला की। मैं थोड़ा जा इस विषय नू अज बाणी विचों खोलना चाहना। मध युग दे अंदर होया कि एडी वड्डी जात पात की खनेरी चली कि सच्ची गल ए वे कि गुणा तो विखोण उच्ची जात वाले लोगों नू पूजिया जान लगा ते जेड़े विचारे गुणा दे खजाने सन नीवी जात विच पैदा होए उन्हां नू धक्या जान लग पिया। ऐसा समा भी आया कि एक जानवर वह तो खूह तो पानी पी सकता है पर शूदर नू कोई हक नहीं कि स्वर्ण जाति वाले दे खूह तो पानी भी पी सके। अज भी पिंडां विच देखण नू मिलदा है इन्ना समा बीतन तो बाद गुरु दे उपदेश देन दे बावजूद उस तो बाद जे शूदर ने आना है तो उन्नू ढोल बजाना पेगा क्योंकि वो परछावें पैन के नाल भी पिटिया जा सकता। उन्हू कोई हक नहीं धार्मिक ग्रंथ पढ़न का, उन्हू कोई हक नहीं को उच्चा गुण ग्रहण करन दा। पर इस दे विचो फिर उच्ची जात वाले ने तशद्दद जुल्म भी शुरू किए, धक्के बहुत किए, ढोर की तरह पशु की तरह सच्ची गल जानवरों की तरह उन्होंने विखार किया गया। परमात्मा ने एक कृपा खेड वरताई, भगती करने वाले महापुरख पैदा हुए ते जदों समाज के उच्ची जात वाले ने उन्होंने लताड़िया धक्या तो उन्होंने अंदर एक अणख एक गैरत की चिंगारी बली, उन्होंने अंदर परमात्मा का नाम परमेश्वर का सिमरन जिन्ना इन्हों लोगों ने ज्यादा धक्के मारे उन्ने वह परमात्मा वाले पासे जुड़े तो बंदगी कर करके एक दिन उस उच्ची थां ते पहुंच गए जिथे अहंकार करने वाला उच्ची जात वाला भी ना पहुंच सके। उन्हें सिमरन किया। और थोड़ी जी मैं बेनती करनी, एक तो अर्ज करांगा भगतां ने रज के विरोध किया जात पात का, भावां कि उन्हें अपनी जात का जिक्र किया पर नाल उन्हें कहा कि मैं अपनी जात तो नफरत नहीं करता, मैं इहदे विच रह के परमात्मा की भगती कर रहा। इन्हां विच कबीर साहब जी, भगत नामदेव जी, भगत रविदास साहब महाराज उन्हों का जिक्र खास करके आएगा। तो बेनती करा भगतों ने विरोध किया, उन्होंने एक मानवता एक परमात्मा की जोत एक रब का संदेश दिता पर असलियत वे फिर भी जात पात अपने जोर से काम करता रहा। इस नुकते नु थोड़ा जा ध्यान सुनियो जो मैं अर्ज कर लगा कि कबीर साहब ने विरोध किया, नामदेव जी ने किया, रविदास जी महाराज जी ने किया पर लोगों ने सुनिया थोड़ बहुत, पर उच्ची जात वालियां दे कान तक ये जू ना सरकी। धन गुरु नानक साहब जी की जोत उन्होंने जात भेद भाव के विरोध में उच्ची आवाज पैदा की। याद रखियो कली आवाज नहीं, उन्होंने अमली रूप च उन्होंने प्रैक्टिकल रूप च उन्होंने करनी दे रूप च एक नवा सिद्धांत हिंदुस्तान की धरती से पेश किया। रविदास साहब कबीर साहब नामदेव जी महाराज जिक्र करते हैं तो उच्ची जात वाले अखौती उच्ची जात वाले कहेंगे ये तो शूदर ने जी तां रौला पाते। पर याद रखियो गुरु नानक साहब जिस परिवार विचों निकलते जिस परिवार विच जन्म है वो स्वर्ण जाति विचों आ रहा परिवार। परिवार ध्यान दियो इस नुकते नु थोड़ा जा समझियो। मैं ये नहीं कि गुरुदेव जी के परिवार जां उन्हां नु किसे जात च बन के जिक्र कर रहा, क्योंकि वह परिवार स्वर्ण जाति चो हारे ते जदों स्वर्ण जाति विचों पैदा कोई हो के जात दे विरोध विच आवाज पैदा करेगा चेते रखियो ते करनी नामा अपना बनाएगा हकीकत एवे के ओदी आवाज दे पिछे एक काफला बनेगा सच एवे ओ काफला इन्ना वड्डा बन गया दसवें पातशाह तक उन्हें खालसा पंथ दा रूप धारण कर लिया। आवाज धन गुरु नानक साहब ने शुरू की थी। आओ थोड़ा जा गुरु ग्रंथ साहब च असी देखिए कि जात ओदे आधार ते भगतां ने फिर उन्हां नूं जे जुल्म भी किया गया उन्होंने भगती का सहारा लेके परमात्मा का शुक्र किया। मैं सब तो पहला जिक्र करना चाहना है भगत कबीर साहब जी महाराज, क्योंकि गुरु रामदास जी के शब्द ने धन गुरु रामदास कृपालू उन्हों का शब्द है तो बाणी विचों प्रमाण ले लेके जिमें उदाहरण दाता जी ने दतिया। पहली बेनती एक है कि जन्म तो किसी इंसान नू नहीं पता कबीर साहब मुताबक कि मैं जात करके कौन खां। जिमें उन्हां दा वचन है कि एक मां दे उदर विच बच्चे दा निमणा उहदे अंग बनने उहदा 9-10 महीने उत्ते निवास रखना। कबीर साहब कहिंदे ने ओ उच्ची जात वाले मैनूं घट्टो घट इह तां दस कि जदों इंसान मां दे पेट विच मां दे गर्भ विच है उदों इहनूं पता सी मेरी जात किहड़ी है। मैं ब्राह्मण दे घर विच खां, मैं खत्री दे घर पैदा होना, उदों इहनूं पता है मैं हिंदू दे घर पैदा होना, उदों इहनूं पता है मैं मुसलमान दे घर पैदा हो रहा। मां दे गर्भ विच बिल्कुल जात नहीं, सच एवे उत्थे केवल परमात्मा की लिवक है। मैं होर एक गल कह दिया बाणी विचों कि उत्थे कोई किसी धर्म की मर्यादा नहीं, सिर्फ आत्मा ते परमात्मा की ही गल है। जिवें गुरु नानक साहब के बचन ने कि पहला पहर है रहण कै वण जा रहा मित्रा हुक्म भया गर्भास। ये एक तुक मैं अर्ज करांगा, उहदे नाल बड़ा क्लीयर होवेगा कि तेरे जन्म तो पहला मां दे पेट विच तेरी जात की सी, केड़ा वर्ण सी, तेरा केड़ा मजहब सी। पहला पहर है रहण कै वण जा रहा मित्रा हुक्म भया गर्भास, उर्द तप अंतर करै वण जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास विखाणे उर्द ध्यान लिव लागा। अगले बचन ने नाम मिर्जाद आया कल पीतर, तेरी कोई मर्यादा नहीं सी, केड़ी मर्यादा लैके तू जन्म लिया? कोई जनेऊ पा के आया, कोई बाहर दे धर्म दे चिन्ह पा के आया? किसे नू कोई पता नहीं जन्म मिले मां दे गर्भ विच ओ हिंदू मुसलमान ईसाई मुसाई यूश ओ ब्राह्मण खत्री शूद वैश नहीं। सतगुरु कहिंदे नाम मिर्जाद आया कल भीतर बौड़ जासी नांगा। मां दे उदर विच कोई जात नहीं। कबीर साहब ने इस पवित्र शब्द नूं गुरु ग्रंथ साहब जदों दर्ज दातार ने कीता ते कबीर साहब कहिंदे ने गर्भवास में कुल नहीं जाती, गर्भवास माता दे उदर विच निवास। उत्थे केड़ी कुल है किसे नूं कोई पता नहीं केड़ी कुल। ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, ब्रह्म दा अर्थ परमात्मा, बिंद दा अर्थ करांगे अंश। कहन लगे जिन्ने भी जीव ने ए परमात्मा दी अंश ने, ए नहीं के उच्ची जात वाला रब दी अंश कहे ते नीवी जात वाला जड़ा ए परमात्मा दी अंश ने। ब्रह्म बिंद ए परमात्मा दी अंश ने। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित, पंडित दा अर्थ है विद्वान। कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए, किस दिन ता तू अपने आप नू उच्ची जात वाला ब्राह्मण कह रहे हैं। ब्राह्मण कह कह जन्म मत खोए। अगले बचन ने जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। साडे जन्म दा रस्ता तां सब दा इको जिहा है, हर इंसान दा जन्म मां दी कुख तो इको रस्ते तो होया है। ते जे तू अपने आप नू उच्ची जात वाला, अपने आप नू स्वर्ण जात वाला मानना है ते फिर तेरा जन्म मां दे किसे होर रस्ते रही क्यों ना हो गया। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। देखो उन्होंने पहली उदाहरण दिती सी कि मां दे पेट विच कोई जात नहीं, दूजा क्या कि इको रस्ते सारियां दा जन्म होया, ते तीसरा उन्हें प्रमाण दिता कहन लगे मान लिया जाए कि तू उच्ची जात है ते मैनू तू नीवा कह दिता। कह लगे आपां दोनां दे तन नू किसे बलेट नाल किसे तिखी चीज नाल चीरने आ, जे तां तेरियां बाहां विच्चों तेरियां नाड़ां विच्चों तेरी बॉडी विच्चों निकले दुध, खून दी थां ते दुध निकलना शुरू हो जाए ते मेरियां नाड़ां विच्चों निकले केवल खून, फिर मैं मन जांगा भाई ते तेरी उच्ची जात तेरियां नाड़ां विच कल्ला दुध चलदा है, मेरियां नाड़ां विच खून चलदा है। वह भलिया जे तेरा भी तन पंजां तत्तां दा, मेरा तन भी पंजां तत्तां दा, तेरियां नाड़ां विच भी खून ते मेरियां नाड़ां विच भी खून, ते तू उच्चा ब्राह्मण किवें ते मैं नीवा शूदर किवें। उन्हां दीआं उदाहरणां ने कि गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए, जौ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काए नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण खम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है। जेड़ा ब्रह्म दी परमात्मा दी विचार करे जात करके नहीं कर्म करके, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत है, हमारा साढ़े घर विच ओ ब्राह्मण जेड़ा ब्रह्म दी विचार करदा है। थोड़ी जी मैं बेनती खोर करांगा इहदे अर्थ कर लग्या, क्योंकि जिहड़ियां तीन उदाहरणां ने शब्द उन्हां दा भी विस्तार आपां बाणी विचों करना है। फिर देखो गुरु साहिब ने एक बख्शिश कीती, उन्होंने एक गल डंके दी चोट ते कही, कली कही नहीं, उन्होंने सचमुच दस जामियां विच एक करके दिखाया। ये मैं अगे बेनती करनी है, हजूर ने एक शब्द वरतिया, कहन लगे जिन्हां नूं नीवी जात दे कहा जांदा है, हजूर कहिंदे ने मैं उन्हां दे नाल खलोता, जिन्हां नूं तुसीं धक्के मार दिओ मैं उन्हां दे नाल खलोवांगा, जिन्हां नूं तुसीं नीच कह के भंड दिओ असल च परमात्मा इन्हां दे घरां विच वसदा है, अपनी जात दा अहंकार करन वालिओ सच इवें तुहाडा अहंकार ही दरवाजे बन गए दीवारां बन गए, तुसीं रब नूं अपने घर विच वसा ही नहीं सके। गुरु नानक साहिब दे बचन ने कि नीचा अंदर नीच जात, नीची खूं अत नीच, आ किड्डी वड्डी पदवी मिल गई जी जिन्हां बंदगी कीती, नीचा अंदर नीच जात, नीची खूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीश, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश, जिथे नीवे लोग बैठते ने मालक उथे तेरी नदर रखे। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच नामदेव भगत कबीर साहिब जी महाराज उन्हां बारे जदों असी पढ़ने खाना भी एक नू छीबा कहा जाता है ते दूजे नू जुलाह कहा जाता है, ते गुरु अमरदास कहिंदे नहीं ये दोनों ब्राह्मण हो गए, ये उच्ची उच्ची पदवी ते पहुंच गए। गुरु अमरदास दे बचन ने कि नामा छीबा कबीर जुलाहा, पूरे गुर ते गत पाई, ब्रह्म के बेते शब्द पछाणै खौमै जात गवाई। ये ब्रह्म के बेते बेते दर ते जानकार, ये परमात्मा दे जानकार ने, खौमे वाली खंकार वाली जिहड़ी जात वह खत्म हो गई, खौमे जात गवाई, सुर नर तिनकी बाणी गावे कोए ना मेटै, भाई देवते उन्हां दी बाणी पढ़दे ने ते इन्हां महापुरखां दी वडियाई नूं शोभा नूं संसार दी कोई ताकत भी मिटा नहीं सकती। मैं फिर संखेप जिहा दोहरा देना कि अज दे शब्द दा जो प्रकरण है कि जिहड़ा बंदगी करेगा भावें उह किसे कुल विच किसे जात विच होवे, सिमरन परमात्मा दा उहनूं सब तों उच्चा कर देगा। एक शब्द मैं होर लैके फिर इस पवित्र अमृत बचन दी व्याख्या वल आउणा, वो अमृत शब्द राग आसा ते गुरु अर्जुन देव दा शब्द है। ये शब्द भगत धन्ना जी दे शब्दां दे दरमियान दर्ज किया है गुरुदेव ने। राग आसा विच भगत धन्ना जी दे दो शब्द, पहला शब्द है भरमत फिरत बो जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे। इस जदों इस शब्द संपन्न हुंदा है इस तुक ते कि धन्नै धन पाया धरनी धर मिल जन संत समानिया, ते इस तो अगला जिहड़ा शब्द आउंदा ओह आउंदा महला पंजवां। उस विच हजूर ने चार भगतां दा जिक्र कीता है, नामदेव जी दा, कबीर साहिब जी दा, रविदास साहिब जी दा, ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਡ ਦਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਆਡ ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ, ਛਿਪਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੀਂਬਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਛੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਆਡ ਦਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਤਿਆਗ ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੋਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜੁਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੋਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਦੇ ਚ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੋਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆਂ, ਬੁਤਕਾਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨੇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੈਣ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੱਟ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਵਿਧ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰੰਭ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਵਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਵਿਸਰ ਵਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਧਨਾੜ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇ, ਕਬੂਲ ਵੀ ਸਹੇ, ਪਰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲਾਂ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਕੁਲੀਨ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਿੱਚ ਸਨਾਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਿੱਚ ਸਨਾਤੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਣੀਆਂ ਪਹਿਰੈ ਸੋਏ। ਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ, ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ।
ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਬਿਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਸੁਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਤੈ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਿਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਈਰਖਾ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਨੂੰ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਣਗੇ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਥਿਓਲੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸਲ ਵੱਟ ਲਈਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ, ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੁੰਗ ਸੰਗ ਸੋਗ, ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਦਿਸ਼ੋਧ ਜਿਸ ਹੈ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਹੈ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੁਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਮੋਢੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖਸਤਨਾਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਪਕਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਵਿਦਰ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਹਾਰੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਹਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਓ ਵਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਓ ਵਿਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਹਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਓ ਵਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਖਿਰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਦਪੁਰ ਜਾਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ, ਸਾਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਭਾਈ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਢੁਕੇਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਨ ਨੂੰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ, ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਨਮ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ। ਵੇ ਲਾਲੋ, ਵੇ ਲਾਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ सतगुरु ने धुर की बाणी विच दर्ज किए। मैं बेनती करांगा, इथे भगत जी कह रहे ने कबीर साहब राजन कौन तुम्हारे आवे, पूछो बिदर दासी सुते, मैं पूछो दे अर्थ कर, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखो ओ गरीब मोय पावे। दुर्योधन हस्ती देख, अपने हाथी देख के तेनों हंकार हो गया कि कृष्ण जी मेरे घर हाथी देख के आ जाएंगे। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो, तेरे घर का दुध ते बिदर दे घर दे कोरे मटके का पानी, इस पानी ने मुकाबला तेरे दुध ने दा मुकाबला कर जाना। तुमरो दूध बिदर को पानो, कहन लगे अमृत कर मैं माने, खीर समान साग मैं पाया, पूछो बिदर दासी सुते, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहानी, कबीर को ठाकुर आनंद बिनोदी जात ना काहूं की मानी। कहन लगे भाई जिमें कृष्ण जी, गल ध्यान न सुनियो, जिमें कृष्ण जी बिदर दे घर गए, उन्हें जात नहीं देखी, उन्हें मकान नहीं देखिया, उन्होंने ओदा प्रसाद पानी नहीं देखिया, सिर्फ अंदर दी भावना देखी। इसे तरह जेड़ा सारिया थावां ते व्यापक मेरा वाहगुरु है, वह किसी की जात नहीं देखता, वह तो केवल अंदर की भावना देखता। इनू गुरु रामदास बचन कर रहे ने, पूछो बिदर दासी सुत है। इस दी व्याख्या श्री मान भाई गुरदास साहब ने की जी अपनी दसवीं वार की एक पौड़ी विच। वह कह आया सुनिया बिदर दे, पंजाबी च सत्रह ने ये कोई चोखे अर्थ करन दी लोड़ नहीं। ते मैं बेनती करांगा, साडा फर्ज बनदा है कि भाई गुरदास साहब नू जरूर पढ़िए, उन्हां दियां वारां दियां पौड़ियां वारां उन्हां दे कबित छवैये सिक्खी प्राप्त होवेगी पढ़ के। आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन कोई रुखा, बड़े पंजाबी दे स्पष्ट शब्द ने। आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन कोई रुखा, घर साडे छड़ के गोले देकर जाए के सुखा। दुर्योधन कह रहे साडे घर जाके छड़ के गोले दे कर की मिलिया, घर साडे छड़ के गोले देकर जाए के सुखा। भीखम द्रोणा करन तज, मेरे घर विच भीषम पितामा द्रोणाचार्य गुरु करण वर्गा दानी, भीखम द्रोणा करन तज सभा शिंगार वड्डे मनुखा, झुग्गी जाए बलायन सबना दे जी अंदर झुखा, सारिया दे अंदर ए तुखिया सी। अगे कहिंदे ने हस बोले भगवान जी, सुन ओए राजा होए सनमुखा, हस बोले भगवान जी, सुन ओए राजा होए सनमुखा, सामने खलो के सुन। कहन लगे तेरे भाव ना दिसई, मेरा ना ही आप दा दुखा, मैनू कोई मुथाजी नहीं, मैनू कोई दुख नहीं, मैं तेरे घर भी जावा, तू राजा होवेगा अपने घर, पर चेते रखी मैं तो भावना वाले दे घर जाना जेड़े भगती कर दे। सुन ओए हस बोले भगवान जी, सुन ओए राजा होए सनमुखा, तेरे भाव ना दिसगी, मेरा ना ही आप दा दुखा, भाव जवेगा बिदर दे, खोरी दे चित चाओ ना चुखा। रंचक मात्र भी तुहाडे विच भावना नहीं दुर्योधन, जेड़ी बिदर दे अंदर है। गोबिंद भाव भगत दा भुखा, परमात्मा ते केवल प्रेमा भगती दा भुखा। मैं बेनती करा भाई, पहला बचन जे गुरु रामदास जी दा के नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया कार, जिस जाए जिदे कार अंदर श्री कृष्ण जी ने निवास कीता है।
हर की अकथ कथा सुनो जन पाई,
हर की अकथ कथा सुनो जन पाई। ये यूं अर्थ कर लिए, हे भाई हे जनो, गुरमुखो ये गल ध्यान नाल सुनो कि हर की अकथ कथा, उस परमात्मा दी अकथ दी कथा नू भावना दे नाल सुनना करो।
जित सहसा दुख भूख सब लह जाए,
जिस दी कथा, कथा दा मतलब ओदी बख्शिश, ओदियां रहमतां नाम जपन नाल की हुंदियां, जेदे सुन नाल सहसा अंदर दे झोरे, सच्ची गल सहसा टिकन नहीं दिंदा, दुख भूख सब लह जाए, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਸਹਿਸਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਹਾਓ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਗਾਏ।
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਬਿਦਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੀਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਪਇਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ।
ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਪਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਪੀ, ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਤਮ ਬਣ ਗਏ। ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭਇਆ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ, ਚਾਰੇ ਵਰਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਰ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਪੁਰਮਨ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਘਰ ਕੈਸਾ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਦਰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੇ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਟਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਥਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਚੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਛੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਅਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਖੋਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਖੋ, ਹਟਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, सच तेरा पैश कारिया ताई क्या डिठे सबे थाम नहीं तुत जेहा बदो पुरख विधाते तां तू सोया। ताई सतगुरु ने कहा हर जपे खर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम। इत्थे संत भगत बंदगी वाले आउण इत्थे जात दे आधार ते नहीं। एक होर बेनती देखो मैं शब्द की व्याख्या भी करनी है ते नाल मेरी इच्छा सी भी गुरसिखी ने की दिता गुरु नानक साहब की जोत ने इस शब्दों विचों केड़ी क्रांति सानू दित्ती। दरवाजे चार ने हरिमंदर साहब दे चार कवाड़ ने ना ते जान दा रस्ता केवल इको जे चार रस्ते नहीं रस्ता केवल इको वे। इहदा मतलब चारे वर्ण आउण चारे मजहब आउण चारे दिशावां दे आउण पर इथों लंघ दे एक गल चेते रखियो दरवाजा केवल एक है आओ चारे पर गल इथे केवल एक परिपूर्ण परमात्मा दी ही होवे। गल सिर्फ एक वाहिगुरु दी इको रस्ता है सिमरन दा। सतगुरु गुरु रामदास कहिंदे ने कि भगत रविदास वह कीर्ति करदे करदे उच्चे हो गए। हुण भगत जी नूं पुछिए भगत साहब जी क्योंकि उन्होंने 40 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब च ते निम्रता च भगत जी मैं कई बार बेनती करना उन्हां पाठ करदे आउंदा जिहड़े आप भी पाठ करदे हो जिहड़े नहीं करदे ना घरां च बैठे भी सुनदे हो मेरी बेनती है कि गुरु ग्रंथ साहब नूं खुद पढ़िए पाठ खुद करिए साधारण पाठ अपना जारी रखिए पर पंजाबी दी अखबार पढ़ के पाठ नहीं करना होना जिन्नी देर तक आपां गुरबाणी दी संथिया नहीं लां। संथिया तो बिना शुद्ध पाठ नहीं किया जा सकता। भगत रविदास साहब की बाणी पढ़ो निम्रता च जे किसी ने कह दिता शूद्र उन्हें कह चलो कोई नहीं मेरी जात यह ही है ना। तो कबीर साहब नूं कोई कहे वो नहीं कहणगे वो कहणगे गल सुन मेरी ध्यान नाल तू मैनू शूद्र कह रहे हैं जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया नाल ही उत्तर दे देंगे। हुण भगत रविदास साहब उन्हां पुछिए महाराज कि चारे वर्ण तुहाडे पैरां च आए गुरु रामदास वचन कर रहे ते भगत साहब कहिंदे ने खां शब्द कह मला राग च पढ़ मैं पूरा देना अर्थ संखेप जा करने पैणगे समय दे लिहाज नाल। शब्द शुरू हुंदा है मलार नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग। नागर जना दा अर्थ नगर दे लोगो ढोल पिटो नगारे वजा के कहो कि रविदास चमारे मैं ता शरेआम कहना के लोगो मैं चमड़े दा काम करना। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग पर मेरे खिरदे विच मेरी चमड़ी नू कन ला के देखो मेरी चमड़ी विचों वैगुरु दे नाम तो बिना होर किसी की आवाज ही नहीं आती पई। मेरे खिरदे विच राम है। तुसी चमार कहिंदे हो पर जिहदे मंदर विच तुसी नहीं वड़न देंदे उन्हें मेरे तन नू मंदर बना लिया। तुसी इट्टां दे मंदर पूंजी जाओ मैं तां कायां दे मंदर विच उन्हूं बिठा लिया। नागर जना मेरी जात बिखांत चमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। अगलियां दो जड़ियां उदाहरणां ने ना इहनूं थोड़ा जिहा सरल तरीके नाल मैं मन नूं समझाउण लई कहण लगा। सुरश्री सलल कृत बारुनी रे संत जन करत नहीं पानंग। जेकर उच्ची जात विच गुणां नूं बंदा हासिल करके अहंकार करे ते उच्ची जात दा अहंकार भी परमात्मा नूं ते बंदगी वालियां नूं भौंदा नहीं। किवें जी? ध्यान दिया जे इस तुक वल जो मैं कहन लगा। सुरश्री दा अर्थ गंगा। गंगा दा पानी पवित्र मानदे ने। जे गंगा दे पानी विचों कोई शराब बना लै ते लोकां नूं इह कही जाए जी कोई नहीं इह गंगा जल विचों निकली है गंगा ते बड़ी पवित्र। भगत जी कहन लगे भगती करन वाले गंगा जल जे नशा बनेगा ते उहदे तो इनकार करनगे ते उच्ची जात विच रह के जिहड़ा जात दा अहंकार करेगा बंदगी वाले ते परमात्मा उहदे तो इनकार करेगा उच्चे गुणा दा जिहड़ा अहंकार करे। सुरश्री सलल कृत बारनी रे सलल लहरां बारनी मीन्स शराब। सुरश्री सलल कृत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग। रब की बंदगी करने वाले इनू पींदे नहीं। सुरा नत अपवित्र जल रे पर जे मैला पानी होवे शराब होवे सुर श्री मिलत न खोए आनंग। जे मैले पानी नू शराब नू गंगा च मिला दियो ते सच्ची गल ओ नशा भी खत्म कर देंदी है, मैले नू भी अपना रूप देंदी। उदो जदो गंगा च बड़ा पानी वगदा सी, इहदा मतलब कि जेकर हंकारी बंदा नाम दा सहारा ले ते उहनू पवित्रता मिल जांदी। अगली तुक, तर तार अपवित्र कर मानिया रे। ताड़ी दा एक रुख है जी, बिहार विच मिलदा, यूपी विच भी मिलदा, ते उहदे विचों ना रस चोंदा है नशा शराब वर्गा। लोकी कट के उहदे नाल भांडा बन देंदे ने, विच तुपका तुपका करके चोंदा है, उहनू वरतदे ने नशे दी थां ते। कहिंदे ने ताड़ी दा रुख अपवित्र मन्निया क्योंकि उहदे विचों नशा चोंदा है। पर उसे रुख दा जदों कागज़ बन जाए ते कागज़ उत्ते कोई बाणी लिख दे, नाम लिख जाए, लोग उस कागज दे बने ग्रंथ नू मत्था टेकदे ने, कहन लगे भलियो मैं ताड़ी दे रुख दी तरह हाँ, पर मेरे खिरदे विच नाम लिखिया गया, तो ना तो मैं मरे पशु हाँ, हुण वड्डियां जातां वाले मैनूं तां मत्था टेकदे ने, मेरे खिरदे विच नाम टेक गया। ये उन्हां दे अपने कहने बचन। तर तार अपवित्र कर मानिया रे, जैसे कागरा करत विचारंग, भगत भगौत लिखी है तै ऊपर पूजिया कर नमस्कारंग, मेरी जात कुट बांडला ढोर ढवंता नितै बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान जेड़े प्रधान पंडित ने तै करें डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दास, तेरे नाम दी शरण विच चारे वर्णा दे लोग झोगे। इनू भाई गुरदास साहब ने अपनी वार दी पौड़ी च लिखिया जी, भगत भगत जग वजिया चौ चक्कां दे विच चमरेटा, बंदगी करके सारियां थावां ते प्रगट हो गया। भगत भगत जग वजिया चौ चक्कां दे विच चमरेटा, पाणा गंडा राह विच कुलां धर्म ढोर समेटा, जौकर मैले चीथड़े खीरा लाल अमोल पलेटा, चौ वरना उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सिखेटा। सतगुरु गुरु रामदास दूजा प्रमाण दिंदे ने कि रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक एक गाए, पतत जात उत्तम पया, सब तो पवित्र हो गए उत्तम पदवी ते, चार वर्ण पे पग आए, खत्री भी ब्राह्मण भी वैश भी शूदर भी, सारे रविदास साहब दे चरणा च मथे टेक दे खन।
नाम दे प्रीत लगे हर सेते, लोग छिपा कह बुलाए।
भगत नामदेव जी दी प्रीत मोहब्बत इश्क नेह ते पाओ परमात्मा न लग गया। हुण जदों सिमरन करन ते लोकां ने छिंबियां दा मुंडा ते नीवी जात वाला कह के ना बोल कसने शुरू कर दिते। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक छिपा कह बुलाए, छिंबा छिंबा कह के उनू लोक छेड़ रहे खान।
खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोड़े, हर नाम देओ लिया मुख लाए।
जेड़े छिंबा छिंबा कह के उनू सतांदे सन, कहन लगे परमात्मा ने ना खतरियां वाल भी पेठ कर ली, उच्ची जात वाले ब्राह्मणा वाल भी पेठ कर ली। ये देखो गुरु रामदास जी दे बचन ने कि खत्री ब्राह्मण पिट दे छोड़े, उन्हां वल पिट कर ली, हर नाम देओ लिया मुख लाए। परमात्मा ने नामदेव नू अपने मुख न ला लिया। एक शब्द मैं उन्हां दा जरूर आप जी नू सुना देंगे इस संबंधी प्रमाण वजो। मैं भी देखे आप विचों कईयां ने देखे, वो मंदिर घूम गया। हुण कई इहदे अर्थ होर करनगे, बैठे विचारे सोचणगे भी इह किहड़ी गल सुणांदा पिया बैठा। पर भगत कहिंदे ने घूमिया, ते कथा करन वाला कहिंदा नहीं घूमिया, जिहदे नाल बीती उह कहिंदा वाकई घूमिया, ते जिहनूं अनुभव कोई नहीं उह अर्थ होर करी जा रहे। हजूर ने बचन कीता, हस्त खेलत तेरे द्योरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। खिनड़ी जात मेरी जात मराया, लोक छिपा कह बुलाए, मैनू नीवी जात दा कहिंदे ने, खिनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। इस जन्म क्यों लै लिया छिंबे दे घर च तेरे नाल जे प्यार सी बन लै कमली चलियो पलटाए द्योरै पाछै बैठा जाए ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे भगत जना को द्योरा फिरे। एक बचन है जदों क्या ना भी छिंबा उन्होंने तैथों तक क्या मोको तू ना विसार तू ना विसार तू ना विसारे रामैया आलावंती ए प्रमजोक है मुझ ऊपर सब को पिला शोध शोध कर मार उठायो कहां करूं बाप बीठला मुवे खोए जो मुक्त देओगे मुक्त ना जाने कोयला ए पंडिया मोको टेढ़ कह दिखे। टेढ़ दा अर्थ है वैसे एक गाल है गाल ड्योढ़ का ए पंडिया मोको टेढ़ कह दिखे तेरी पैज पछौंडी कोयला ओदे अखीर च कहिंदे ने फेर दिया द्योरा नामे को पंडियन को पिछवार ला। जिधर भगत बैठे उधर मंदिर भी घूम जाते हुंदे। धन गुरु रामदास कहिंदे ने भाई जितने भी अज तक भगत ने तुसी तीर्थां ते नहाउण जांदे हो ये तीर्थ ते भगतां नूं पूजदे पए। गुरु रामदास अगलेरा बचन करदे खन
जितने भगत हर सेवका मुख आठ सठ तीरथ तेन तिलक कढ़ाए।
जिन्ने परमात्मा दे भगत ने जिन्ने सिमरन करन वाले सेवक ने अठ आठ तीर्थ उन्हां दे मस्तक ते तिलक लांदे पए ने। इहदा मतलब कि उन्हां दा सत्कार तीर्थ भी करदे ने। इहदे इउं अर्थ कर लईए कहे कबीर को भया उदास तीर्थ बड़ा के हर का दास। कहिंदे मैनूं एक गल परमात्मा दस मैं उदास हो गया तीर्थ वड्डा के तेरी भगती करने वाला वड्डा। कहन लगे नहीं तेरी भगती करने वाला ही वड्डा। जितने तीर्थ ने भगतां दे सेवकां दे मस्तक ते तिलक लाण दा मतलब उन्हां दा सत्कार करदे खन।
जन नानक तिन को आन दिन परसे जे कृपा करे हर राए।
धन गुरु रामदास निम्रता दे पुंज निम्रता दे घर गुणा दे गाक ते नाम दे रशि सल। जन नानक तिन को जिन्हां ने भगती कीती अन दिन परसे मैं दिन रात उन्हां दे चरण परसना। मालक जे कृपा करे खर राय जे खरी राजा वैगुरु कृपा करे उन्हां दे चरण परसा रोज परसा जेड़े तेरी भगती कर दे। मैं बेनती करांगा कि देखो गुरु नानक साहब जी ने जात पात दे विरोध विच केवल आवाज ही नहीं उठाई उन्होंने प्रैक्टिकल बहुत कुछ उन्हें सिद्धांत दिता। भाई मरदाना साहब नार रहे भाई लालो दे घर प्रशादा छकिया गुरमुखो इत्थी बस नहीं अनेकां होर ऐसे गुरु के सिख जिन्हां नूं अखौती जात वाले नीवे कहिंदे सन भगती कर करके वो गुरु घर नाल जुड़े। जिन्हां भगतां नूं उस वक्त दे मध युग ने धक्के मारे मेरे सतगुरु ने सब तो वड्डी कृपा ए कीती उन्हां सारे भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कर दित्ती। जदों दसवां जन्म आया ना जी अखीर ते शिखर बना दिता बाबे नानक दे सिद्धांत विचों केसगढ़ दी पहाड़ी चौजी प्रीतम खलोते ने अमृत दी दात बनी है। उस वक्त उच्ची जात वालियां क्या ए की ए छिंबा ए चूर ए नाई ए जट ए खत्री ए की कर रहे हो तुसी वर्ण वर्ण ते सठ ते रतन सिंह भंगू ने आप गुरु पंथ प्रकाश लिखिया है कि गुरुदेव ने क्या कि सत सनात और बारह जात जाने नाही राजनीति की बात जट बूट जह कह जग माही बाणिए बेकाल किराण खत्री सदाही लहार तरखान गुती जात कमीनी छीपो कलालन पै किरपा कीनी अमृत दे के क्या इन गरीब सिखन को देओ पातशाही ये याद करें खमरी गुरियाई। जिन्हां नूं तुसी नीवे कहिंदे हो इन्हां नूं पातशाह बनावांगा ते नाल फिर उच्ची जात वाला जिहड़ा दावा करदा सी खर थां ते मेरी थाली मेरी रोटी पहलां ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀਕੋ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੋ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਦ, ਇਹ ਵੈਸ਼। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕਥਾ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇਗਾ ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸ਼ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਜਾਣੇਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਨ ਦਿਨ ਪਰਸੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।